Today's between master and disciples will be presented in Hindi, with subtitle in Arabic, Polish or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. हिंदुत्व को पृथ्वी पर के सबसे पुराने जीवंत धर्मों में से एक माना जाता है, जिसका मूल भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यता से जोड़ा जाता है। प्रारंभिक आध्यात्मिक हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 900 ईस्वी पूर्व में संकलित हुआ। अन्य पवित्र हिंदू ग्रंथों में वेद, उपनिषद, भागवत गीता और रामायण शामिल है। अपनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों के साथ हिंदुत्व एक विस्तृत, वैविध्य और रंगीन धर्म है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कारण और प्रभाव, कर्म का नियम, एक अकेला स्वर्गीय जीव जिसके बहुत से अवतार हैं और जिसकी सभी जीवों के लिए जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति की इच्छा है। हिंदुत्व के पोषित मूल्यों में से एक मूल्य अहिंसा या हिंसा का निषेध है। हिंदुत्व के अनुसार धार्मिक मान्यताएं और अभ्यास दैनिक जीवन के अभिन्न होते हैं। इसका एक उदाहरण है कैसे अहिंसा को शाकाहार द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो सभी जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित करता है। हम अब प्रस्तुत करते हैं उद्धरण हिंदुत्व के पवित्र ग्रंथ देवी भागवतम से, अध्याय 2 चौथे खंड से।
देवी भागवतम चौथी पुस्तक द्वितीय अध्याय कर्म के प्रभाव की सर्वोच्चता। सूत जी बोले, सत्यवती के पुत्र और पुराणों के ज्ञाता ज्ञानी व्यास से, जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जिसका हृदय शांत हो गया था, ने इस प्रकार पूछा तो उसकी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने निम्न शब्दों में उत्तर दिया। व्यास बोले, हे राजन, आप बेहतर जानते होंगे कि इस जगत में कर्म का पाठ आसानी से समझने योग्य नहीं है। देवता भी कर्म के अद्भुत प्रभाव का बोध करने में सक्षम नहीं है, मानव की तो क्या कहें। जब 3 गुणों से मिलकर यह जगत उत्पन्न हुआ, कर्म के द्वारा सभी चीजों की उत्पत्ति हुई। वह कर्म का बीज था जिससे यह जीव उत्पन्न हुए, जिनका ना कोई आरंभ ना कोई अंत था। वे जीव अक्सर अनगिनत विविध गर्भों में जन्म लेते हैं और फिर उनका विलय हो जाता है। जब ये कर्म खत्म हो जाते हैं, तब जीवों का किसी दूसरे शरीर से कोई और संबंध नहीं रह जाता। जीवों के द्वारा किए गए कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। जिनमें से शुभ सात्विक कर्म है, अशुभ तामसिक कर्म है और मिश्रित राजसिक कर्म है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। यह तीनों आगे अन्य 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। वे हैं संचित, भविष्य और प्रारब्ध। ये तीनों कर्म शरीर के साथ हमेशा रहते हैं। हे राजन, सभी लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इन कर्मों के प्रभाव में रहते हैं और वे सुख दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, हर्ष और विषाद, लोभ, क्रोध, मोह और अन्य शारीरिक गुणों को कर्म के प्रभाव से अनुभव करते हैं, जिसे हम साधारणतः भाग्य कहते हैं। अतः प्रेम, घृणा और अन्य शारीरिक गुण सभी शरीरों में समान रूप से प्रबल रहते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अन्य गुण देवों, मानवों और पक्षियों में पिछले अवसरों में कुछ नापसंद करने से उत्पन्न होते हैं और प्रेम, करुणा, दया इत्यादि पहले से विद्यमान कुछ प्रकार की पसंद से उत्पन्न होते हैं। हे हे राजन, बिना किसी कर्म के कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा ही सूर्य आकाश में घूमता है। कर्म के द्वारा ही चंद्रमा उपभोग की बीमारी से पीड़ित हुआ था और कर्म के द्वारा ही रुद्र ने कंकाल की हड्डी के चक्र को थामा है। इस कर्म का अतः ना तो आदि है न अंत। ये कर्म ही इस जगत के निर्माण का एकमात्र कारण है। इस कारण यह संपूर्ण जगत गतिशील और अगतिशील वास्तविक है, लेकिन मुनि इसकी वास्तविकता और अवास्तविकता को जांचने के लिए ध्यान में गहरे डूबे रहते हैं। वे निश्चय ही यह नहीं जान सकते कि क्या यह संसार सत्य है या असत्य। जहाँ माया प्रबल है, वहाँ ब्रह्मांड का अस्तित्व है। जहाँ कारण सभी संदर्भों में पूर्णतया विद्यमान रहता है, वहाँ कोई प्रभाव नहीं होता है। हम कैसे कह सकते हैं माया अनंत है और हमेशा सभी प्राथमिक कारणों के लिए उत्तरदायी है। अतः हे राजन, ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि कर्म का बीज अनंत होता है। यह संपूर्ण जगत कर्म के नियंत्रण द्वारा नित्य बदलता रहता है। हे राजाओं के राजन, वे कहते हैं यह विष्णु की इच्छा से असीम ऊर्जा और वैभव से यह सारा ब्रह्मांड सभी प्रकार के गर्भों में प्रवेश करता है, चाहे अच्छा या बुरा। अब अगर अनंत शक्ति वाले विष्णु का जन्म उनकी इच्छा से गठित होता है, तो ऐसा क्यों है कि उन्हें बहुत से अपवित्र जन्मों से गुजरना होता है? ऐसा क्यों है कि भगवान विष्णु विभिन्न युगों में निम्न अधम कुलों में अपना जन्म लेते हैं? वे आत्मनिर्भर व्यक्ति कौन है जो अपने निवास, बैकुंठ और सभी प्रकार के सुखों और आनंद को छोड़कर इस नश्वर मंदिर में रहने की इच्छा करेगा, जो मूत्र, मल और अन्य कुछ चीजों से भरा है? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आरामदायक विश्राम स्थलों और कामुक क्रीड़ाओं तथा पुष्पों के संग्रह को नहीं छोड़ेगा गर्भ के गर्भाशय में रहने की खातिर। कौन गर्भ में अपना चेहरा नीचे की ओर करके रहना पसंद करता है, जब वह कपास या रेशम से बुने अच्छे स्वर्गिक कोमल गद्दों का आनंद उठा रहा हो? कौन गायन, नृत्य और संगीत का परित्याग करके जहाँ सभी प्रकार की प्रेमानुभूति प्रदर्शित होती हो और इस भयानक नरक में नीचे आने की सोचेगा? कौन लक्ष्मी द्वारा दिए अद्भुत स्वादिष्ट अमृत और समृद्धि का परित्याग करेगा, जिसका आसानी से त्याग संभव नहीं, और फिर इस मूत्र और मल को चखना पसंद करेगा? गर्भ में रहने के समान तीनों लोकों में इससे अधिक निकृष्ट कोई और नरक नहीं है। मुनि इससे भयभीत होकर इस अद्भुत संसार में कठिन तपस्याएं करते हैं। ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति अपने साम्राज्यों और सुखों को त्याग देते हैं और वनों में निवास करते हैं। कौन इतना मूर्ख है जो इच्छा पूर्वक विविध गर्भों में प्रवेश करेगा? कीटाणु और जीवाणु जीव को गर्भ में पीड़ा देते हैं। पेट की जठराग्नि इसे नीचे से गर्म करती है, जहाँ यह हमेशा भयपूर्वक सभी ओर से मांस से बंधा रहता है, चर्बी से घिरा हुआ। हे राजन, वहाँ सुख का कोई नामो निशान नहीं दिखता है। लोहे की कठोर बेड़ियों से बंधे हुए एक कैद घर में रहना अधिक बेहतर है, जबकि एक पल भी गर्भ में रहने की इच्छा नहीं होती। 10 महीने तक गर्भ में रहना बहुत कठिन और दुखदायी है। कठिन और भयानक गर्भ से बाहर आना अत्यंत पीड़ादायक होता है। जीवों को अपने बचपन में कष्ट होता है, वे बोल नहीं सकते हैं और वे नहीं जानते क्या कहना है। जब वे भूखे या प्यासे होते हैं, वे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं और वे रोते रहते हैं। जब बच्चा भूखा होता है और रोता है, माता चिंतित हो जाती है। जब बच्चा रोग से पीड़ित होता है और रोता है, माता तब जानती है और दवाइयां देती है। इस प्रकार बहुत से कष्ट बचपन में उत्पन्न होते हैं, अतः ऋषि यहाँ कोई खुशी नहीं पाते हैं और किसी भी कारण यहाँ आने की इच्छा नहीं करते हैं। हे राजन, कोई समझदार पुरुष दिव्य आनंद और देवों को छोड़कर इस कष्ट को श्रेष्ठ नहीं समझेगा और गर्भ की कष्टपूर्ण स्थिति में जन्म नहीं लेगा। हे राजाओं के राजन, सभी देवों, ब्रह्मा और अन्य को उनके किए गए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वे आनंदपूर्ण हो या कष्टपूर्ण। हे सर्वोत्तम राजन, कर्म का फल चखना ही पड़ता है, चाहे पवित्र हो या अपवित्र, चाहे वह एक देव हो या मानव या एक पशु। कोई भी जिसने स्वयं को अच्छे या बुरे शरीर में आना स्वीकार किया है, मानव अपनी तपस्या के अभ्यास से धार्मिक कर्मकांडों, दान और बलिदान द्वारा केवल इंद्र का पद पा सकता है। इंद्र उसके बाद जब उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाता है, नीचे हीन योनियों में जन्म लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम के अवतार में देवों को बंदर के रूप में जन्म लेना पड़ा था और कृष्ण के अवतार में देवों को मानव, गोपियों और यादवों के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा भगवान विष्णु से कई बार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने का निवेदन किया गया था। हे नशरों के राजन, इस प्रकार गाड़ी के पहिए की तरह भगवान हरि अद्भुत तरीके से विभिन्न गर्भों में लगातार अवतार लेते रहे हैं। दैत्यों का विनाश हरि द्वारा उनके दूसरे कई अवतारों में किया गया। अब मैं आपको कृष्ण के जन्म के पवित्र तथ्यों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिन्होंने यदु के परिवार में अवतार लिया। हे राजन, कश्यप मुनि के अंग स्वरूप जन्मे वासुदेव को पिछले कर्मों के कारण पुनः एक मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था और गायों की देखभाल कर जीविका अर्जित करनी पड़ी थी। हे राजाओं में सर्वोत्तम, कश्यप मुनि की दो पत्नियां अदिति और सुरसा को दो बहनों देवकी और रोहिणी के रूप में शाप के फल स्वरूप जन्म लेना पड़ा था। हे भरत के वंशज, इस तरह हमने सुना है कि वे एक बार जल के देवता वरुण द्वारा शापित हुए थे, जो बहुत क्रोधित हो गए थे। राजन ने पूछा, कश्यप मुनि द्वारा कौन सा अपराध किया गया कि उनको अपनी पत्नियों के साथ गवाले के रूप में जन्म लेना पड़ा, और क्या कारण था कि चिरस्थाई निर्विरोध आत्मा विष्णु नारायण को गोकुल में जन्म लेना पड़ा था। वे जिनका निवास वैकुंठ में है, जो राम के स्वामी हैं, जो भगवान हैं और देवों में सर्वोच्च हैं, जो जगत और युगों के पालक हैं, किसकी आज्ञा के अनुसार ऐसा जीव अपना निवास त्याग कर इस संसार में एक साधारण मानव के रूप में जन्म ले सकता है? मेरी इस महान शंका का निवारण करें। इस दमित मानव शरीर को पाकर व्यक्ति हमेशा विविध विचारों से व्याकुल रहता है। कभी लिप्सा, क्रोध, ईर्ष्या, असहनशीलता, दुख, शत्रुता से, और कभी आनंददायक अनुभूतियों, खुशी, भय, कष्ट, दर्द से, कभी सीधे सीधे बात करने से, अच्छे या बुरे कर्मों से, विश्वास पूर्णता से, कपट, अस्थिरता से, दूसरों का समर्थन करने से, कभी पश्चाताप, हिचकिचाहट, शेखी मारने, लोभ, व्यर्थ बातें बनाने से, भ्रम या मिथ्याचार से, और कभी कभी पश्चाताप से, ये विभिन्न अनुभूतियां मानव में विद्यमान रहती हैं। तब कैसे भगवान विष्णु अपने अनंत सुख का त्याग कर सकते हैं और इस मानव जन्म में आ सकते हैं, जो बहुत से व्याकुल करने वाले विचारों से भरा हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, मानव के जन्म में कौन सा विचित्र सुख है कि श्री भगवान हरि को मानव गर्भ में रहने का बोझ सहन करना पड़ा। हे मुनीन्द्र, वे पीड़ाएं जो गर्भ में रहने पर अनुभव की जाती हैं, प्रसव के समय का दर्द, बचपन की परेशानियां, युवापन में कामुकता का कष्ट, गृहस्थ जीवन के महान दुख और कठिनाइयां, ये सभी वहां विद्यमान हैं। तब भगवान विष्णु कैसे विविध मानव जन्मों में अवतार लेते हैं? ब्रह्मा द्वारा प्रेरित हरि को अपने राम अवतार के समय कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उस उच्च आत्मा को जंगल में देश निकाला, अपनी पत्नी सीता का हरण, लगातार युद्ध और अंततः अपनी पत्नी सीता से अलगाव की पीड़ा झेलनी पड़ी थी। उसी तरह कृष्ण अवतार में एक कैद में जन्म लेना, गोकुल प्रस्थान करना, गायों की देखभाल करना, कंस का वध करना, भारी मुश्किलों के साथ द्वारिका प्रस्थान करना और सभी प्रकार की ग्रस्त कठिनाइयां वहां थीं। क्यों उन्होंने इन सब का कष्ट झेला था? ज्ञानी और मोक्ष प्राप्त लोगों में कौन अपनी इच्छा से इतने सारे कष्टों को अपने कंधे पर उठाने की इच्छा रखेगा? यह गंभीर शंका मेरे मन में है। कृपया दयापूर्वक मेरी इस गंभीर शंका का निवारण करें और मेरे मन को शांत बनाएं। इसके साथ ही महर्षि वेदव्यास के 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम की चौथी पुस्तक का दूसरा अध्याय समाप्त होता है।
गुरु और शिष्यों का वार्तालाप के आज के एपिसोड पर आपके साथ के लिए धन्यवाद। आगे आ रहा है पृथ्वी ग्रह, हमारा प्रिय निवास। ध्यान योग्य समाचारों के बाद यहाँ परम गुरु टेलीविजन पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल्स। प्लेनेट अर्थ आवर लविंग होम इज अप नेक्स्ट राइट आफ्टर नोटवर्दी न्यूज हियर ऑन सुप्रीम मास्टर टेलीविजन।